सागर और सरिता का शरीर देखते देखते राख में तब्दील हो गया और हमारी आंखों से उझल हो गया। हम दोनों ही उनकी मौत के लिए खुद को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। आपके पिताजी ने उस हादसे के बाद अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली, अपने समुदाय की रक्षा का दायित्व अपने कंधों पर उठा लिया और ये नियम बनाया कि कोई वैम्पायर किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या नहीं करेगा। शाश्वत अपनी पराजय से बेहद गुस्से में था और अब उसकी दूसरी योजना शुरू हो चुकी थी। एक बार फिर वो हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचने लगा था। 5 साल बीत गए पर हमें कोई संतान नहीं हुई। हमें लगा हमारे कारण 2 निर्दोष प्राणियों के प्राण गए थे, शायद उसी की सजा हमें मिल रही थी। पर ऐसा नहीं था, नियति ने शायद कुछ और ही तय किया हुआ था हमारे लिए। शादी के 6 साल बाद आपके आने की खबर मिली। इस साम्राज्य को उसका उत्तराधिकारी मिलने जा रहा था। सब और खुशियां ही खुशियां थीं, पर तभी शाश्वत फिर से हमारी खुशियों पर ग्रहण बनकर छा गया। धोखे से उसने आपके पिता को बंदी बना लिया। आपके दादा जब अपने अंतिम श्वास ले रहे थे तब उन्होंने हमें एक रहस्य बताया। कैसा रहस्य माँ? अन्वय, जो बड़े ध्यान से उनकी बात सुन रहा था, उसने जिज्ञासावश उनके चुप होते ही सवाल किया। अनामिका जी ने उसे देखा और आगे बताना शुरू किया। उस दिन उन्होंने हमें बताया कि सागर और सरिता ने इस कुटुंब के सम्राट और साम्राज्ञी को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। उनके बलिदान और त्याग से प्रसन्न होकर हमारे इष्ट देव ने उन्हें पुनर्जन्म का आशीर्वाद दिया था। उन्होंने इंसानों की दुनिया से होते हुए हमारे समुदाय के लिए बिना किसी स्वार्थ के अपने प्राणों की चिंता किए बिना जो कुछ किया, उसके कारण उनका अगला जन्म हमारे कुटुंब के सदस्य के रूप में होगा। आपके दादाजी ने ही हमें बताया था कि क्योंकि सागर के प्राण आपके पिता को बचाते हुए गए थे, उन्होंने इंसान होते हुए हमारे लिए बहुत कुछ किया, इसलिए हमारे देवता ने उन्हें इस समुदाय का सम्राट बनकर हमारे समुदाय के लिए कार्य करने का अवसर प्रदान किया है। हमारे गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वो सागर का पुनर्जन्म होगा, पर उसे ये साबित करना होगा कि वो इस पद का हकदार है। आप हमारे बेटे होकर भी एक इंसान थे। आपकी शक्तियों का एहसास आपको 18 साल बाद होना था और तब तक आपको एक इंसान के रूप में रहना होगा, एक आम इंसान की तरह जिंदगी की मुश्किलों का सामना करना होगा। उसके बाद आपको आपकी शक्तियां मिलेंगी। हुआ भी वही, आपके जन्म के वक्त परिस्थितियां ऐसी थीं कि हम आपको अपने पास नहीं रख सके और आपको एक सुरक्षित घर देकर उनके हवाले कर दिया। उन्होंने आपको पाला। वे दोनों जानते थे कि आप मनुष्य नहीं हैं। आपकी सुरक्षा के लिए हमने जैक को आपके पीछे लगा दिया और यहाँ की जिम्मेदारियां संभालने लगे। आपके माता पिता ने आपको बहुत प्यार दिया, पर एक हादसे में वे आपसे दूर हो गए और आपके और मदन की जिंदगी मुश्किलों से भर गई। यह आपकी तपस्या थी जिसे आपने पार किया और आपके 18वें जन्मदिन पर हम आपके पास चले आए, क्योंकि उस दिन आपको अपने वजूद का पता चलना था। जैसा कि तय था, उस दिन आप पहली बार वैम्पायर बने और हमने आपको बताया कि आप हमारे बेटे हैं, पर आपने हमारी बात नहीं मानी। आप भी जानते थे कि हम सच कह रहे थे, पर आप अपने भैया के मोह से खुद को आज़ाद नहीं कर पाए और हमारे साथ वापस आने से इनकार कर दिया। अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया आपने, पर हम जानते थे कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आपको भी अपने पिता की तरह अपने दायित्वों का एहसास होगा। और वो दिन आया। आन्या आपकी ज़िंदगी में आई और उनके लिए आपने अपने भाई को छोड़ दिया। हम हैरान थे जब जैक ने हमें ये बताया। ऐसा कैसे हो सकता था कि एक मामूली सी लड़की आपको इतना प्रभावित कर जाए? एक मुलाकात में आपने उनके लिए अपने भैया को छोड़ दिया, ये बात हमें कुछ ठीक नहीं लगी। उसके बाद हमने आन्या के बारे में पता करवाना शुरू किया। आपके दादाजी ने हमें बताया था कि सागर के साथ साथ सरिता का भी पुनर्जन्म हुआ है। आपके जन्म के कुछ साल बाद उन्होंने फिर से जन्म लिया आपके लिए, और वो भी एक वैम्पायर है। ये हमारे देवता का आशीर्वाद था, उनके बलिदान के स्वरूप। पर आन्या वही लड़की है, ये हम नहीं जानते थे। आपके दादाजी ने हमें बस इतना कहा था कि आगे का राज नियति खुद खोलेगी, भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है वो खुद भविष्य उजागर करेगा। पहले तो हमें कुछ पता नहीं चला, हमें लगा कि शायद हम ही ज्यादा सोच रहे हैं, आन्या वो नहीं जो आपके लिए बनी है। पर फिर जब आप उन्हें यहाँ लेकर आए तब हमारा शक बढ़ने लगा। हमने फिर से उनके बारे में जानकारी निकालनी शुरू की। उनके घर से तो कोई खास बात पता नहीं चल सकी, पर इस बीच हमें एक ऐसे के बारे में पता चला जिसने आन्या को बचपन से देखा था। आन्या की दाई माँ, जिन्होंने उनके बचपन में संभाला था, उन्होंने हमें बताया कि आन्या के जन्म से पहले ही उनकी माँ और पापा जानते थे कि अगर इस बच्चे का जन्म होगा तो उनकी माँ नहीं बच पाएंगी। तब कोई नहीं जानता था कि आन्या एक इंसान नहीं है। उनकी माँ ने बच्चे को जन्म देने का फैसला लिया, वो भी अपने पति के खिलाफ जाकर। तब भी उन्हीं दाई माँ ने उन्हें संभाला था। आन्या के जन्म के साथ ही उनकी माँ दुनिया छोड़कर चली गई और उनके पिता ने उसके लिए आन्या को जिम्मेदार ठहराया। उसके बाद उनकी जिंदगी मुश्किलों से भर गई।
दाई माँ ने ही बताया कि बचपन से आनिया के कंधे पर अजीब सा निशान था जिसके बारे में सिर्फ वही जानती थी। उनसे हमें पता चला कि आनिया के रूप में सरिता ने फिर से जन्म लिया है आपसे मिलने के लिए। कुदरत ने अपना करिश्मा दिखा ही दिया, आप दोनों एक दूसरे से मिल गए। बीते जन्म के बंधन ने आप दोनों को दूर जाने नहीं दिया। आनिया अपने अस्तित्व से अनजान थी, आज भी अनजान है, अपने पिछले जन्म के बारे में कुछ नहीं जानती, फिर भी आपकी मोहब्बत में अपनी दुनिया छोड़कर यहाँ आपके पास चली आई है। बहुत पवित्र प्रेम है उनका। पिछले जन्म में आपके घायल होने पर उन्होंने अपनी जान दे दी थी, क्योंकि आपके बिना वे एक पल भी जीवित नहीं रहना चाहती थी। आपके लिए उनका प्रेम तब भी उतना ही गहरा था जितना आज है। आनिया के बारे में जानने के बाद हमें समझ आया कि क्यों आपने उनके लिए अपनी दुनिया, अपने भाई को छोड़ दिया। आनिया के कारण आपने अपने अस्तित्व को स्वीकारा, पर उन्हें नहीं स्वीकार पाए। अपने दायित्वों को निभाने के लिए उन्हें छोड़कर यहाँ आ गए, पर वे आपके बिना नहीं रह सकी और आपके पीछे पीछे यहाँ चली आईं। अगर अब भी आपने उन्हें नहीं अपनाया तो सिर्फ आनिया नहीं बल्कि सरिता के साथ भी अन्याय करेंगे आप, क्योंकि आपके प्यार को पाने के लिए उन्होंने आपसे कहीं ज्यादा बदतर जिंदगी जी है, आपसे ज्यादा मुश्किलों का सामना किया है, तब जाकर आपसे मिली हैं। आज भी उन्हें अपने अस्तित्व का भान नहीं है, वे एक इंसान होकर भी आपकी दीवानी बन गई हैं। आपके प्रेममयी समाज से उनकी शक्तियां जागृत हुई हैं, पर अब भी उन्हें इसका एहसास नहीं है। उनकी इच्छा शक्ति आपसे प्रबल है, उनके अंदर आपसे ज्यादा शक्तियां हैं, पर वे इसके बारे में नहीं जानती। हमने आपको सारी बात बता दी है, आप विक्रांत और शाश्वत का अंत नहीं कर सकते, आप दोनों मिलकर ही ये कार्य कर सकते हैं। इसके लिए आपको उन्हें उनकी शक्तियों का एहसास कराना होगा, उन्हें बताना होगा कि वे आपसे अलग नहीं हैं, आपका अभिन्न अंग है वे, जो आपको और आपकी शक्तियों को पूर्ण करती हैं। अब फैसला आपका है, अपने पिछले जन्म के प्यार को इस जन्म में भी अधूरा रखना है या पूर्ण करना है उसे। आनिया जितना आपसे प्यार करती है उतना कोई और नहीं कर सकता, और प्रेम तो आपका भी अथाह है उनके लिए, बस आप मानते नहीं हैं। अगर प्रेम नहीं होता तो आज वे यहाँ नहीं होती।
हमने आपको सारी सच्चाई बता दी है, अब आखिरी फैसला आपका होगा। आपकी माँ होने के नाते हम अपनी मर्जी आपको बता देते हैं, हमें आनिया बेहद पसंद है आपके लिए। जैसे आप गंभीर हैं, आपके जीवन साथी को उनके तरह चंचल और हसमुखी होना चाहिए। अगर वे एक वैम्पायर नहीं भी होती तब भी हम यही कहते कि वही हमारी बहू बनने योग्य है। आगे जो आपको ठीक लगे आप वही कर सकते हैं, बस इतना याद रखिएगा कि पिछले जन्म में उन्होंने आपके लिए अपने प्राण दे दिए हैं। पिछले जन्म में उन्हें उनकी आखिरी सांस तक बस इंतजार मिला था, और इस बार भी अब तक तो सब्र के साथ आपका इंतजार कर रही है। पर अन्वय, किसी को इतना भी इंतजार नहीं करवाना चाहिए कि जब आप उसके पास पहुंचे तो उसे आपका इंतजार ही न रहे। उम्मीद करते हैं जैसे आप समझदारी से सभी फैसले लेते हैं, इस फैसले को भी सोच समझ कर लेंगे। इतना कहकर वे वहां से चली गईं। अन्वय गहरी सोच में डूब गया। अभी अभी उसे जो पता चला वो कोई मामूली बात तो नहीं थी, और इतनी बड़ी सच्चाई को अपनाने में वक्त तो लगना ही था। वो आज तक जो हुआ, जो उसने देखा, महसूस किया और जो उसे अभी अभी पता चला, उन्हीं सब के बारे में सोच रहा था। उसने तो आन्या को हर बार इनकार किया ये सोचकर कि वो एक इंसान है। कितनी मुश्किलों से उसको खुद से दूर रखा था सिर्फ इसलिए कि वो एक इंसान है, और अब एक झटके में सब बदल गया था। उसने जो सहन, खुद से लड़ा, आनिया का दिल तोड़ा, सब कुछ बेवजह था, ये सोचकर ही उसको दुख हो रहा था। जब इंसान के रूप में पहली बार उसके सामने आई थी, दीवान तो तभी बन गया था उसका, पर कभी अपनी भावनाओं को खुलकर जाहिर नहीं कर सका। उसने किया भी तो उसे अपना नहीं सका, पर अब क्या करेगा? क्या वो एक वैम्पायर है इसलिए उसको अपना लेता? क्या अगर वो वैम्पायर नहीं होती तो नहीं अपनाता उसे? कभी कभी उसे अपने दिल की बात नहीं बताता, कभी अपने प्यार को जाहिर नहीं करता? यही सब सवाल उसको अब परेशान कर रहे थे। अन्वय उठकर आन्या के कक्ष के बाहर पहुंचा तो जूली ने बताया कि आन्या अब भी सो रही है। अन्वय अंदर चला आया और उसके सामने खड़े होकर एक टक उसके चेहरे को देखने लगा। कुछ देर बाद अचानक ही आन्या की पलकें हिलने लगीं तो अन्वय वहां से चला गया। आन्या को नींद में भी अन्वय को किस करने वाला पल नजर आने लगा, और वो घबराकर एकदम से उठकर बैठ गई। उसने घबराकर आसपास नजरें घुमाई, खुद को अपने कमरे में देखकर वो थोड़ा हैरान हो गई और खुद से ही बोली, कहीं वो सब सपना तो नहीं था तेरा? नहीं, मुझे याद है, वो पल इतना खास था मैं उसको भूल ही नहीं सकती। अन्वय के साथ थी मैं वहां, पर किसके बात का मुझे कुछ याद क्यों नहीं? मैं यहां कैसे आई? फिर कुछ याद करके उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं और वो खुद से ही हैरानी से बोली, आन्या वो सब गया भाड़ में, पहले तूने आज क्या कांड कर दिया है उसके बारे में सोच। तूने उस खड़ूस को किस कर दिया, वो भी लिप्स पर, अब वो तुझे नहीं छोड़ेगा, तुझे अपनी आंखों से ही भस्म कर देगा। नहीं आन्या, तुझे ये नहीं करना चाहिए था, वो तू अपने प्यार को कबूल भी नहीं करता और तूने उसे किस कर दिया,
अब वो क्या सोचेगा तेरे बारे में, तुझसे खूब नाराज होगा और बहुत गुस्सा भी करेगा। इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई तुझसे, अब क्या करेगी तू, कैसे फेस करेगी उसे? आन्या रोते हुए चेहरा बनाकर बैठ गई। तभी उसे कुछ याद आया और वो एकदम से बोली, अरे तू इतना परेशान क्यों हो रही है, इसमें परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं है। वो मौसम का और उस पल का असर था, हो गया तो हो गया। उसने भी तो एक बार मेरे गाल को गलती से चूम लिया था, तो मुझसे भी हो गई गलती। अब गलती करने पर उसका कॉपीराइट थोड़े है कि सिर्फ उसी से हो सकती है गलती, तो कभी भी किसी से भी हो सकती है। उसने एक बार मुझे मेरी मर्जी के बिना किस किया और एक बार मैंने उसे किस कर लिया, हो गया हिसाब बराबर। अगर उसने कुछ कहा तो मैं अब यही कहूंगी उसे, हाँ यही सही रहेगा, इससे तो उसके सामने शर्मसार होने से बच जाएगी। वाह आन्या, क्या जबरदस्त दिमाग पाया है तूने। उम्मा, उसने एक्साइटमेंट में खुद को ही फ्लाइंग किस दे दी और खुशी से उछल पड़ी। फिर अपने लबों को छूकर शर्मीली सी मुस्कान के साथ बोली, ये मेरी फर्स्ट किस थी, वो भी उसे जिसकी मैं दीवानी हूँ। कितना स्पेशल मोमेंट रहा होगा वो, जाने उसने कैसे रिएक्ट किया होगा, मुझे तो कुछ भी याद नहीं, पर उसके लबों के स्पर्श को अब भी महसूस कर पा रही हूँ मैं। आन्या एक बार फिर उस पल को याद करते हुए मुस्कुरा उठी। जूली कुछ देर बाद अंदर आई तो आन्या को खुद से ही बातें करता देखा और अकेले में मुस्कुराता देख उसके भाव सख्त हो गए। उसने उसके तरफ आते हुए कुछ परेशान होकर कहा, आप ठीक हैं? आवाज सुनकर आन्या अन्वय के ख्यालों से बाहर आई और उसे देखकर मुस्कुराकर बोली, मैं ठीक नहीं, बहुत 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 ज्यादा ठीक हूँ और खुश भी बहुत हूँ। उसकी खुशी उसके चेहरे पर झलक रही थी। जूली ने उसको देखते हुए फिर से सवाल किया, ऐसा क्या हुआ है जो आप खुश हैं? कुछ नहीं, बस मैं यूं ही आज बहुत खुश हूँ, आन्या ने बात को छुपाते हुए मुस्कुराकर कहा। बदले में जूली ने भी मुस्कुराकर कहा, आपको मल्लिका ने दोपहर के भोजन के लिए नीचे बुलाया है। लंच नीचे सबके साथ? आन्या ने थोड़ी हैरानी से कहा, क्योंकि उसका खाना हमेशा या तो ऊपर आता था या वो गार्डन में जाकर खाती थी। जूली ने उसका सवाल सुनकर हामी भर दी तो आन्या उठकर उसके साथ चली आई।